तो आज बाबा ने हम सबको गिफ्ट दिया दिव्य नेत्र, और इससे पहले क्या दिया था, दिव्य बुद्धि। लेकिन कभी कभी ये नेत्र भी और दिव्य बुद्धि भी दोनों काम करना चालू कर देते हैं, बंद कर देते हैं। क्यों? क्योंकि ग्रहण लग जाता है। तो हम देखेंगे कि जो गिफ्ट हमको मिली है वो कहाँ खो जाती है, क्यों वो गिफ्ट काम नहीं करती है, क्यों हम उसको छोड़ देते हैं, छोड़ने पर विवश क्यों हो जाते हैं, उसको कैसे हम अपने आप संजो के रखें, कौन सी स्मृतियाँ हमारे जहन में हों ताकि वो गिफ्ट स्वतः काम करती रहे। बाबा कहते हैं तुम बच्चों पर अभी बृहस्पति की दशा बैठी हुई है, लेकिन कभी कभी राहु का ग्रहण भी लग जाता है। तो राहु का ग्रहण कहाँ लगता है ये देखेंगे। संसार में देखते हैं हर व्यक्ति जो है किसी ना किसी समस्या के वशीभूत है, कोई टेंशन है, कोई मानसिक वेदना है, कोई बीमारियां हैं। कहा जाता है इस तरह की अगर परिस्थितियां क्रिएट होती हैं तो समझो राहु का ग्रहण है, ऐसे माना जाता है संसार में। और राहु का ग्रहण, इसकी भी एक शास्त्रों में कथा है, जब देवताओं और दैत्यों ने समुद्र मंथन किया तो उसमें से बहुत कुछ निकला, और एक उसमें से अमृत भी निकला था लास्ट में, उसमें से विष भी निकला, हाथी घोड़े रंभा देवी बहुत सारी चीज़ें निकली। लेकिन उनसे हमको कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि वो हमारे काम में आने वाली नहीं है। हमारे काम की चीज़ें लास्ट वाला अमृत। तो हुआ ये कि जब समुद्र मंथन किया गया तो दैत्य और देवताएं करने के बाद एक अमृत जो निकला तो उसमें दोनों अमृत लेने के हकदार थे। तो असुरों ने भी सोचा कि भी हम भी अमृत लेंगे, तो उसमें जो विष्णु है वो एक मोहिनी रूप में अवतरित होते हैं, क्योंकि अगर वो अमृत दैत्यों के गले में उतर जाता तो वो सदा के लिए अमर हो जाती। अब वो विष्णु मोहिनी रूप में आते हैं, ऐसे ही सभा लगी होती जैसे हम लोग बैठे हैं, तो एक तरफ दैत्य बैठे थे एक तरफ देवता है, लेकिन यहाँ तो सब देवता है लेकिन दैत्य हमारे अंदर ही है बैठे हुए, तो वो भी हमको देखना है। तो देखा वो अमृत पिला रहे थे मोहिनी रूप में जब विष्णु, तो बहुत आकर्षक रूप था उनका। तो दो दैत्य थे वो तो एकदम उनके जैसे बॉडी कॉन्शियस में होते हो तो उनकी सूरत भी मोहित हो गई सूरत पर, और देवता ही बैठे थे। तो जो विष्णु जी अमृत बांटने लगे तो सामने एक टेबल रखी होती है, तो उस टेबल पर एक कलश पड़ा होता है, उसके बीच में अमृत होता है। तो जैसे विष्णु जी अमृत लेके जाते हैं तो देवताओं को वो अमृत पिलाते हैं, फिर वो वापस वहाँ रखते हैं तो एकदम वो चेंज हो जाता है, लेकिन पता नहीं चलता उसका। तो उसके जो दूसरा कलश होता है वही कलश दूसरे रूप में परिवर्तन हो जाता है, तो उसमें मदिरा होती है, तो वो मदिरा दैत्यों को पिलाते हैं। लेकिन दैत्य सोचते हैं ये अमृत ही है, क्योंकि क्योंकि उसका नशा तो चढ़ता ही है उसका, तो उनको बहुत अच्छा लग रहा। तो ये चलती रही प्रक्रिया टर्न बाई टर्न। तो बीच में एक दैत्य था, हम भी टोली जैसे देते हैं। तो एक दैत्य था, देखा, क्योंकि दैत्य भी संसार में जो भक्त लोग भी होते हैं वो भी तो भक्ति करते हैं ना, उनके भी अपने एक नियम कड़े कायदे होते हैं, सच्चे मन से करते हैं। तो बीच में एक बैठा था राहु दैत्य, उसका पहले नाम था सिंहस्थ कुछ ऐसा नाम था। तो उसने जब उसको थोड़ा सा शक हुआ कि कहीं हमारे से छल किया जा रहा है, तो वो जब विष्णु जी उसको मोहिनी रूप में मदिरा माना उनके रूप उनके तो मन में यही था कि अमृत है ये, लेकिन वो मदिरा पिलाते थे, तो जैसे उसके पास जाते थे तो वो पीता नहीं था, वो मदिरा को जाने देता था, तो उसको नशा नहीं चढ़ा उसका, वो जागृत अवस्था में रहा। तो उसको थोड़ा शक हो गया पैदा कि कुछ तो गड़बड़ है, विष्णु जी हमारे साथ छल कर रहे हैं। तो उसने भी थोड़ा ध्यान किया, अपनी माता को याद किया, दुर्गा माता जो भी उसने याद किया होगा, पूछा तो हमने आया नहीं किसको याद किया, लेकिन किसी को तो याद किया और शिव को याद किया कि अगर मैंने सच्चे मन से आपकी भक्ति की है तो मुझे दिखाओ ये कि कौन है बांट रहा है, ये जो मोहिनी रूप में अवतरित हुआ है तो ये कौन है। तो जैसे उसने अपनी शक्ति से देखा तो देखा ये तो विष्णु है, मोहिनी रूप में जो अवतरित हुई है अप्सरा, ये अप्सरा नहीं ये तो विष्णु है, तो हमारे साथ छल किया जा रहा है। तो फिर वो दैत्य जो राहु है वो उठकर अपना रूप चेंज कर लेता है देवता के रूप में और पिछले दरवाजे से आके इधर बैठ जाता है, जैसे मानो उधर से गएंगे तो इधर आके बैठ गया। तो मन की आंखों से नेत्र मिलन, तो फिर देखा तो वो आके देवताओं में बैठ गया। अब विष्णु जी उनको बांटने लगे अमृत जो अप्सरा के रूप में मोहिनी थी। तो जैसे वो राहु को बांटने लगे जो देवता के रूप में बैठे हुए थे, तो सूर्य और चंद्रमा उन दोनों को पता चल गया। तो जैसे वो डालने लगे अमृत, तो अमृत तो आ गया थोड़ा सा, लेकिन उन्हें तुरंत बोल दिया कि ये दैत्य है, ये दानव है, राक्षस है, असुर है, ये देवता नहीं है। तो तुरंत वो रुक गए विष्णु जी जो मोहिनी रूप में थे, लेकिन अमृत थोड़ा जा चुका हुआ था। तो वो कलयुग विष्णु था ना, वो सत्ययुग वाला विष्णु नहीं था, वो द्वापर कलयुग के बाद का विष्णु था, इसलिए उसको पता नहीं पड़ा। तो इसलिए उस समय तीसरा नेत्र बंद हो गया, या फिर योग में बैठे झुटका आ जाता है तो झुटका आ गया। तो फिर वो जब पता चल गया था, सूर्य चंद्रमा ने बीच में रोक दिया कि ये तो दैत्य है। तो जब विष्णु को पता चला तो विष्णु फिर अपनी जो मोहिनी रूप में थे अपने असली स्वरूप में आ गए। तो फिर वो जब उसको भी राहु को पता चला कि मैं भी पकड़ा गया, तो वहां से वो भी खिसक लिया। फिर थोड़ा भाग रहा था तो पीछे से विष्णु जी ने अपना सुदर्शन चक्र चला दिया और उसका गला काट दिया। अब गला काट दिया तो अमृत तो जाग चुका हुआ था। तो गला काटने के बाद फिर उसने बोला कि आपने हमारे साथ छल किया है, तो वहीं से उसकी शत्रुता चालू हो गई कि सूर्य और चंद्रमा के साथ, कि अब मैं आपको हमेशा के लिए तंग करता रहूंगा, आपके ऊपर अपना पूरा प्रभाव डाल के रखूंगा। तो तब से ग्रहण लगना चालू हुआ। अब ये पता नहीं सन कौन सा था, वो आप ढूंढते रहना। तो तब से विष्णु सूर्य और चंद्रमा के ऊपर ग्रहण लगता है। तो अब हम देखेंगे कि हमारे ऊपर कौन कौन सा ग्रहण है, जिसका बाबा मुरली में बहुत दफा जिक्र करते हैं कि तुम बच्चों के ऊपर भी कभी कभी राहु की दशा बैठ जाती है, राहु का ग्रहण लग जाता है, जो कि हमको पता नहीं चलता। इसलिए बाबा कहते बच्चे चलते चलते माया के पेट में चले जाते हैं, आज माया अजगर उसके पेट में चले जाते हैं। हाँ, बाकी दूसरे भी ग्रह थे, मंगल शनि शुक्र ये सब बैठे हुए थे वहां। सबसे पावरफुल दो यही नहीं, पर क्योंकि ये सूर्य और हाँ ये राहु केतु, लेकिन इधर देवताओं में सूर्य और चंद्रमा थे। तो राहु केतु दोनों थे, फिर दोनों अलग अलग हो गए। तो खैर उनके तो व्यथा कथा लग है, उसका कोई हमारे जीवन से लेना देना नहीं है, लेकिन जो हमारे अंदर जो राहु केतु बैठे हुए हैं हमें उनको देखना है कि कैसे हम उनको निकालें। तो देखेंगे इस ब्राह्मण लाइफ में चलते चलते जो हमारी मनोस्थिति गिर जाती है बार बार, या हम ब्राह्मण जीवन का सुख नहीं ले पाते हैं, या जिस अवस्था को हम प्राप्त करना चाहते हैं उससे हम वंचित रह जाते हैं, या जीवन में कई प्रकार के विघ्न आते हैं उनसे हम निर्विघ्न करने का सामर्थ्य प्राप्त नहीं कर पाते हैं, तो कौन कौन सा ग्रहण हमको लगा हुआ है वो हमको देखना है, जिसके लिए बाबा कई दफा मुरली में हमको बार बार सचेत करते रहते हैं, जागरूक करते रहते हैं। तो सबसे पहला तो है हमको अलस्य अलबेलेपन का ग्रहण लगा हुआ है, एक तो है नींद वाला, दूसरा विस्मृति हो जाती है। कई दफा हम अपने जो कार्य हैं कर्म क्षेत्र पर है, या जो हम पुरुषार्थ करना चाहते हैं उसको हम अलबेलेपन के रूप में टाल देते हैं कि अभी नहीं कल कर देंगे। तो अलस्य अलबेलापन अमृत वेले है, जैसे अलस्य वश माने एक जबरदस्ती कर रहे हैं उसको, पूरा अलस्य की चादर जैसे अलस्य की रजाई ओढ़ के रखी है, उसमें हमारी जागृत अवस्था नहीं है, कोई मजा नहीं आ रहा है, अलस्य जैसे चिपका हुआ हमारे शरीर से, हमारी आत्मा से चिपका हुआ है। तो अलस्य अलबेलेपन का ग्रहण लगा हुआ है, तो उसको हमको उससे भी हमको मुक्ति प्राप्त करनी है। फिर मुक्ति प्राप्त करने के उपाय फिर अलग से हैं वो फिर बाद में, लेकिन पहले हम देखेंगे कि कौन कौन से हमको ग्रहण लगे हुए। तो सबसे पहला है आलस्य और अलबेलेपन का है, दूसरा है आसक्ति। हमारा हमारी जो है कौन कौन सी चीजों हमारा लगाव है, अटैचमेंट है, आसक्ति है, जिनको देखते हम अपना सारा पुरुषार्थ की रफ्तार हमारी ढीली पड़ जाती है, या हमारे अच्छे संकल्प चलना ही बंद हो जाते हैं, या हम चिंतन ही नहीं कर पाते हैं कहाँ कहाँ कौन कौन सी जो अटैचमेंट है हमारी बुद्धि में, जो इसको हमने पकड़ के रखा हुआ है, वो भी हमको निरीक्षण करना है। वही वो अटैचमेंट कोई स्थूल वस्तुओं से हो सकती है, साधनों से हो सकती है, व्यक्ति से हो सकती है, किसी स्थान से हो सकती है, खाने पीने में हो सकती है। तो आसक्ति हमारी कहाँ कहाँ जा रही है, अनासक्त भाव क्यों पैदा नहीं हो रहा अंदर में, तो ये दूसरा ग्रहण है आसक्ति। तीसरा है अपवित्रता, जो हमारे ब्राह्मण जीवन का मुख्य फाउंडेशन है पवित्रता, उसके विरोध में अपवित्रता का ग्रहण कहीं हमारे ऊपर लगा तो नहीं हुआ है। जैसे बताया कि तीसरे नेत्र से हमको केवल आत्मा को ही देखना है, लेकिन वो शायद देखना नहीं है, दिखाई तो शरीर ही देगा, लेकिन इस शरीर की भी वास्तविकता को अगर हम जानेंगे तो इस शरीर से भी हमको जैसे वैराग्य आएगा, है ना। तो लंबे समय का प्रयास करने के बाद हमने देखा है कि शरीर तो दिखाई देता है, लेकिन अगर हमारा आंतरिक अभ्यास निरंतर चालू रहता है, जिसके लिए हम जागरूक भी रहते हैं, पुरुषार्थ करते हैं, तो वास्तव में शरीर आकर्षित नहीं करता है, क्योंकि शरीर की वास्तविकता को हम जान चुके हैं, इसके अंदर है क्या है। इसलिए अपवित्रता का ग्रहण अगर लगा हुआ है तो वो भी हमको चेक करना है कि कैसे हम अपनी प्योरिटी को दिन प्रतिदिन बढ़ाते चलें, कैसे हम सोमान की सीट पर सेट होकर अपने नेत्र, जो हमको बाबा के द्वारा गिफ्ट मिला है, दिव्य बुद्धि दिव्य नेत्र मिला है, उसको हम हमेशा कार्य में लगाते रहें, ताकि हम अपवित्रता के ग्रहण से भी मुक्त हो जाएं। तो तीसरा था अपवित्रता का ग्रहण। चौथा है भक्ति का ग्रहण। ब्राह्मण लाइफ में भी कई बार भक्ति का ग्रहण लगता है, यहाँ आने के बावजूद ही कुछ ऐसे संस्कार होते हैं जिन जो छूट नहीं पाते हैं, भक्ति जैसे संस्कार मांगने के, जैसे बाबा हमको कहते हैं अपनी सोमान की सीट पर सर्वोच्च, मांगने की जरूरत नहीं है, भगवान से मांगने की जरूरत नहीं, वो तो दे ही रहा है, जैसे दिया ना, लेकिन फिर भी हम मांगें, लेकिन उस गिफ्ट को हम संभाल के कहाँ रखते हैं। तो भक्ति में मांगने के संस्कार हैं, या फिर कई दफ़ा हमने देखा है कि इस लाइफ में आने के बाद भी फिर जादू टोने के संस्कार आ जाते हैं, वो पहले वाले छूटे नहीं हैं, या वास्तुशास्त्र के संस्कार हैं, देखेंगे ये चीज़ यहाँ नहीं यहाँ होनी चाहिए, ये चीज़ यहाँ नहीं यहाँ होनी चाहिए, पाँव इधर नहीं इधर होने चाहिए, ये सब चीज़ें होती हैं, इन सब चीज़ें से छूटना है, क्योंकि ये सब चीज़ें इस धरा की हैं, हमको जिस धरा पर जाना है, परम धाम में जाना है, तो वहाँ का चिंतन करना, बाएँ वास्तुशास्त्र भक्ति वक्ति थोड़ी चलेगी। तो हम इसी संसार का अगर चिंतन करते रहेंगे तो यही संसार का ग्रहण हमको लगा रहेगा, पकड़ के रखेंगे, इस ग्रहण को हमने ग्रहण कर लिया है जैसे। तो भक्ति के संस्कार जो सूक्ष्म है मांगने के, जैसे कई बोलते हैं आप थोड़ी देर, हाँ जी, ग्रहण ने हमको ग्रहण कर लिया हुआ है और कहीं ना कहीं हमने भी ग्रहण को ग्रहण किया हुआ है, प्यार हो गया ना लंबे समय से। तो सूक्ष्म सूक्ष्म बातें भक्ति की, जैसे कई दफा कहते हैं हमको थोड़ा दृष्टि दे दो, थोड़ा हाथ रख दो ऊपर, लेकिन इससे होगा थोड़ा नहीं, भावना एक अलग बात है, लेकिन फिर भी पुरुषार्थ तो अपने करना पड़ता है, अपने पुरुषार्थ के दम पर ही आगे बढ़ना पड़ेगा। हाँ, एक सामान्य रूप से हमको मिलती है दृष्टि, ठीक है, या कभी कभी दूसरे में इतनी ताकत होती है, ठीक है, ले सकते हैं, लेकिन हमेशा हमारी वो परिपाटी नहीं बनी रहनी चाहिए मांगने की, भक्ति के संस्कार, नहीं तो वही संस्कार मांगने के चलते रहेंगे तो अपनी संपूर्णता के मंजिल पर कब पहुंचेंगे। तो एक भक्ति के संस्कार हैं, फिर है बहानेबाजी के संस्कार भी हैं, बहानेबाजी का ग्रहण लगा हुआ है, कई सारी बातें होती हैं, बहाने शक्ति से बहाने दे देते हैं कि मुरली सुनने क्यों नहीं जा पाए, योग में क्यों नहीं आ पाए, पेट खराब था, मौसम खराब है, या बच्चों की तबीयत खराब है, पति सहयोग नहीं देता है, पत्नी खुर्रात है, ऐसे सारे बहुत सारे बहाने लगा देते हैं, बारिश बहुत है आज, तो इस तरह के ये सारे बहानेबाजी का भी ग्रहण लगा हुआ है। तो हमको देखना हम कौन से बहानों को हमने पकड़ के रखा हुआ है, या बहानेबाजी की गिरफ्त में हम अभी भी जकड़े हुए हैं, तो उससे भी निकलना है, इस ग्रहण से भी हमको मुक्ति प्राप्त करनी है। तो ये जी, हाँ, बड़ी बहन जी दूसरी जगह गई है, छोटी बहन नहीं सुनेंगे मुरली, हाँ, ये सारी सूक्ष्म बातें हैं, तो वो एक थोड़ा दूसरे उसमें डालेंगे, हम दूसरे खाने में डालेंगे, ये लगे। तो ये था भक्ति के, बहानेबाजी के ये सारे ग्रहण लगे हुए हैं। तो तीसरा देखना है, तीसरा है चिंताओं का ग्रहण लगा हुआ है, बहुत सारी चिंताएं पकड़ के रखी। बाबा कहते हैं मैं तुम बच्चों को केवल एक ही चिंता लगी रहनी चाहिए, कौन सी? ओना लगी रहना चाहिए, संपूर्ण बनने की चिंता, कुछ दिन पहले था मुरली था, वापस घर जाने की चिंता लगी रहनी चाहिए, चलो आबू, उस दिन था ना मुरली में सारी, चलो आबू, आबू की महिमा, आबू के तीर्थों की महिमा की, तो चिंता कौन सी? केवल संपूर्ण बनने की, संपन्न बनने की, अपने अंदर दिव्य गुणों को धारण करने की। जो चिंता हम ब्राह्मण जीवन में जब कदम रखा था तो हमको इतनी सारी चिंताएं थी कि हमको तपस्वी बनना है, हमें अपने संस्कारों को बदलना है, हमें पूरे देवता गुण ग्रहण करने हैं, अपने जीवन को महान बनाना है, तो वो वाली चिंताएं लगी रहनी चाहिए। दूसरी चिंताओं को भी पकड़े रखेंगे तो वो चिंताएं हमको छोड़ेंगी नहीं, फिर हम पुरुषार्थ कैसे कर पाएंगे। तो इन चिंताओं का ग्रहण भी, चिंता तो रखनी है, हाँ घर में भी रहते हैं लेकिन टू मच उसमें इन्वॉल्व नहीं रहना, क्योंकि उस चिंता को हम ज़्यादा करते हैं तो वो चिंता हावी हो जाती है, फिर योग में बैठे बैठे वही चिंतन चलता रहेगा। इसलिए जितना भी हमको टाइम मिले तो इस चिंतन में अपनी चिंता को समाप्त करके वो चिंता को समाप्त कर देना है। तो चिंताओं का भी ग्रहण लगा हुआ है। तीसरा है फिर क्रिमिनल एटीट्यूड, हमारी वृत्ति कैसी है, अंदर ही अंदर हमारी सोच कैसे चलती है, हमारे संकल्प कैसे, हमारा दृष्टिकोण कैसा है, इसका भी हमको कहीं ग्रहण तो नहीं लगा हुआ है। तो लंबे समय का अभ्यास करने के बाद ही हम इस ग्रहण से छूट पाएंगे। नेक्स्ट है कंपैरिजन का, उस दिन कंपैरिजन की कितनी सारी 60 बातें बताई थी, कंपैरिजन का ग्रहण, दूसरों की तुलना। देखते हैं अधिकतर ये बहनों में ज़्यादा होता है थोड़ा कंपैरिजन का, दूर को डोर। हम भी बहने थे पिछले जन्म में, आप ऐसे नहीं सोचना, आपको बोल रहे हम आत्मा तो नहीं, दोनों क्या बोला, समय अनुसार, जैसे बाबा कहते आज की मुरली में नवज समय, आज की मुरली में तीन बातें, उसको देख के ज्ञान देना है ना, तो बाबा भी हमारी नवज को देख के ज्ञान देते हैं, कभी मेल कभी फीमेल, कभी मेल फीमेल, समय नवज धरनी, तीन बातें ध्यान देना है। तो हम देखते हैं जब ओम शांति उनमें पार्टियां आती हैं सुनने के लिए, तो सामने बैठे होते हैं, हम इस तरह बैठते हैं तो आंखों से पता तो चल जाता है, आंखों से सब कुछ पढ़ा जा सकता है कि क्या देख रहा है, क्या सोच रहा है, क्या बोल रहा है। तो देखते हैं जो दूसरी पार्टी आगे से गुजर रही होती ना, तो बहनें देखती हैं, अच्छा इसने साड़ी कितनी अच्छी पहनी है, वो तो ज्ञान तो कम सुनते हैं, वो दूसरे की तरफ देखते रहते हैं, उसके मोबाइल की तरफ देखते रहते हैं, फिर दूसरा आया, दूसरे को, तीसरे को, फिर हम पूछ लेते हैं क्या मिला आपको देखने के बाद। तो ये कंपैरिजन की है, घरों में भी ऐसे ही होता है या ब्राह्मण लाइफ में भी ऐसे होता है, अच्छा इसने जैकेट पहनी ना, इस मेरी भी ऐसी जैकेट होनी चाहिए, कहाँ से सिलाई, वो कंपैरिजन करेंगे। बैज, शॉल, शॉल तो बहुत अच्छी, बड़े बड़े छेद वाली चौ। तो ये चीज़ें कंपैरिजन हम करते रहते हैं, तो हमारा टाइम जो है कंपैरिजन के ग्रहण में चला जाता है। तो कंपैरिजन भी नहीं करना है, अपने आप को देखना है, भिखारी नहीं बनना है, छोटी छोटी बातों में भिखारी बनते रहते हैं, अपने ओरिजिनल स्थिति में स्थित रहना है। तो ये था। फिर नेक्स्ट है ड्रामा का ग्रहण, ड्रामा को उल्टे रूप में हम कर लेते हैं। परसों की मुरली में अंतिम लाइन थी कि जो नसीब में होगा मिल जाएगा, है ना, तो ये ड्रामा का उल्टा ग्रहण है कि पुरुषार्थ होगा ड्रामा में तो कर लेंगे। तो ड्रामा के हम रचता हैं, हमारी वो रचना है, तो अगर रचना के वशीभूत हो जाएंगे तो क्या होगा, फिर रचना तंग होगा। तो हमको ड्रामा को उल्टे रूप से, ड्रामा को हम बना रहे हैं, बनी बनाई बन रही, माना हम अभी बना रहे हैं, आगे के लिए भी बन रहा है वो। तो कहाँ ड्रामा को यूज़ करना है, उल्टे तरीके से यूज़ करने से हम स्वयं ही अपने जैसे पांव पर कुल्हाड़ी मार लेते हैं, पुरुषार्थ के कदम हमारे पीछे हो जाते हैं। तो ड्रामा का ग्रहण उल्टे रूप से, उल्टे ड्रामा का ग्रहण जिसको कहेंगे, वो ना लगे रहे। ड्रामा का रचयिता बनना है, ड्रामेबाज नहीं बनना है, ड्रामा का रचयिता बनना है, राइट। नेक्स्ट है शत्रुओं का ग्रहण, शत्रुओं का, एनिमी। अब कौन कौन से शत्रु हो सकते हैं हमारे, दूसरे भी, अपने भी हो सकते हैं, है नहीं, विकारों ने दूसरे भी हो सकते हैं, दूसरे कोई भी शत्रुओं का ग्रहण लगा होता है, जैसे लौकिक में समझ लीजिए, अलौकिक में भी है, अगर कोई हमको देख के जलता है या कोई हमारा कटाक्ष करता है, हमारे विरोध में कुछ उल्टा प्रचार करता है, तो वो सामने से हमको शत्रु प्रतीत होता है, तो हम एक शत्रुओं की सेना तैयार खड़ी कर लेते हैं, हमारा उनके प्रति दृष्टिकोण बदल जाता है कि ये बाहर से तो ठीक लग रहा है लेकिन वहां जाके मेरी ग्लानी करता है, तो सामने एक शत्रु खड़ा जाता है, तो उनका भी हमको ग्रहण लगा, तो हमको शत्रु पैदा नहीं करने हैं। वो वाह कहते मित्र कौन है आपका जो आपकी ग्लानी करे, तो वो हमारे मित्र हैं, शत्रु तो कोई है नहीं। तो ये भी हमको देखना है, कहीं हम ही सूक्ष्म रूप से, या सूक्ष्म रूप से हमको विकार तो हमारे शत्रु है ही है, तो ये भी हमको देखना कि वो ग्रहण तो नहीं लगा हुआ है। नेक्स्ट है फैशन का ग्रहण, फैशन लौकिक जीवन में भी और अलौकिक जीवन में भी है, क्योंकि अलौकिक में आने के बाद भी लौकिक का फैशन छूटता थोड़ा नहीं है। नेल पॉलिश, सेंट, ये सब चीजें नहीं छूटती हैं, है? हेयर स्टाइल, डाई, हाँ हेयर डाई भी करते हैं, हेयर स्टाइल भी करते हैं। तो सबसे बढ़िया हेयर स्टाइल तो ये सुखदेव भाई का है, झंझट ही खत्म। बोले 15 मिनट बच गए, मतलब 15 मिनट कैसे, ये तो 2 मिनट लगते। बोला 2 टाइम स्नान करना, उसको धुलाई करना सिर को, फिर तेल डालना, कितना टाइम बच गया। इंटरनेशनल स्टाइल नेचुरली, और जिसके अपने तो नेचुरल हो रहे दिन प्रतिदिन झड़ रहे। तो ये क्या था, फैशन। तो फैशन का ग्रहण तो नहीं लगा हुआ है इन, क्योंकि फैशन भी बहुत सारी हमारी एनर्जी को खा जाता है। और अगर हम करते हैं, कई देखा कई दफा इतना गहरा सेंट लगा देते हैं, बाजू में बैठे 10 लोग ऊपर के तुरंत नीचे आ जाते हैं उस सेंट की खुशबू से, कुटिया में सब जगह, बाबा के कमरे में, कुटिया में, हाँ सेंट लगा के आते। अब बाबा को खुशबू थोड़ा सूंघेगा उधर आके, वह थोड़ा बोलेगा कितना अच्छा मेरा खुशबूदार बच्चा है, खुशबू तो अंदर आनी चाहिए उसके लिए खुशबू, लेकिन दूसरों के लिए बदबू है, क्योंकि सबको सेंट तो नहीं जमता है, तो एलर्जी हो जाती है उससे, वो सिर के ऊपर चढ़ जाता है, हमको तो दर्द हो जाता है। हमारे पास इधर एक बैठते थे, अभी आज दिख नहीं रहे, तो यहाँ बैठते थे, मैं बोला नहीं बैठा करो, बोला क्या हुआ, वो पॉन्ड्स का पाउडर होता ना, वो भी सिर में चढ़ जाते कई बार। तो ये भी देखना है सिंपल, बाबा कहते सादगी, सादगी रहो, तो सादगी में भी हमारी पहचान है, सादगी में हमारी श्रृंगार है, पवित्रता है। तो ये था फैशन का। दूसरा है फियर, डर, डर का भी है एक अज्ञात सा डर रहता है ना, जैसे रास्ते में जाते कुछ दिख नहीं तो रहा है, अनुमान लगे वहाँ, गलत फहमी होती है, हाँ भालू का डर रहता है कि कुछ है तो नहीं बाहे, बंदर ना आ जाए, तो ये भी डर रहता है। तो अगर हमारे मन में सबके प्रति एक, बाबा ने कल की मुल्ले में कहा था, अब तुम्हें हद और बेहद दोनों से पार जाना है, हमारा वो दृष्टिकोण होना चाहिए, कितनी हद और बेहद दोनों से पार जाना है। हम ना केवल इंडिया के हैं, ना केवल दूसरी कंट्री के, ना अपनी स्टेट के, बल्कि पूरे वर्ल्ड के, लेकिन इससे भी, इस वर्ल्ड से भी पार जाना है, हद और बेहद से पार। उसको क्या कहेंगे, हद और बेहद और ऊपर वाला गया है, हाँ लेकिन उसको क्या कहेंगे, हद बेहद से पार, उसको क्या कहेंगे, ब्रह्मांड, चलो फिर सोचेंगे आज क्या कहेंगे उसको। तो ये था कि डर, किसी प्रकार का हमको डर नहीं होना चाहिए, अपनी कमजोरियों का भी डर होता है या दूसरों से भी डरते हैं, तो ये डर का भी ग्रहण हमको समाप्त करना है। नेक्स्ट है गिल्ट कॉन्शियस, अपनी कमजोरियां अंदर ही अंदर, मेरी कमजोरी तो खत्म होती नहीं है, कैसे होगा ये, बड़े लंबे समय से कर रहे हैं, हाँ पश्चात चल रहा है, वो सब छोड़ देने का है, उसको हम कुछ कर तो नहीं सकते, जो हो गया तो हो गया, उसको हम क्या कर सकते हैं, उसको बाबा नहीं कुछ कर सकते हैं, बाबा जी ने एक ही हथियार दिया, फुल स्टॉप, खत्म, उसको सोचना ही नहीं उसके बारे में, हो गया हो गया। अब बच्चे को आप 2000 का नोट दे दो तो फाड़ देगा ना, उसका थोड़ा ही दोष है, पकड़ाने वाले का दोष है, उसने रखा क्यों ऐसे, तो हम भगवान के आगे सब बच्चे हैं, हमने तो किसने पकड़ा दिया, हमने थोड़ा किया कुछ, हमारा दोष थोड़ा नहीं है, तो हम तो अज्ञानता का पर्दा पड़ा हुआ, अब आके उसने पर्दा खोला तो आगे से हम सचेत हो जाएंगे, तो जो पिछली बातें हो गई वो हो गई, खत्म हो गई, उसको सोचने का नहीं, बार बार सोचते बैठ जाते हैं, नहीं तो पिछली सारी बातों को बैठ के अंदर ही अंदर दुखी होते रहते हैं, तो फिर सुख कब अनुभव करेंगे। तो ये देखना है कि जो गिल्ट कॉन्शियस अंदर में है, उसको उस ग्रहण से भी हमको मुक्त होना है। नेक्स्ट है गलतफहमी, जो बोल दिया, गलतफहमी का भी ग्रहण लगा होता है, अनावश्यक रूप से अगर कोई कुछ दो बातें आपस में कर रहे हैं तो हमको हो जाती है, मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है कि हमारे बारे में महात्मा बात कर रहा है, अनुमान लगाते हैं, पहले एक भाई यहाँ क्लास करा चुका अनुमान का, अनुमान तो यही था बैठ के कराई तो वो भी देखना हमको कि कौन सा ये ग्रहण ना लगाओ, कौन सा गलतफहमी वाला। फिर नेक्स्ट है, हाँ जी, हाँ नहीं अब तो हम कितना, वो कितने दिन पहले हो गया, वो खत्म हो गया, तो पास हो गया, अभी तो बोला फुल स्टॉप, अभी अभी हम अवतरित हुए हैं, क्योंकि पिछली नया जीवन, नया जन्म नहीं, ये नहीं, ये नया जीवन, अच्छा बोई थे वो भूल गया ना, पास्ट हो गया वो तो ये देखना है कि हम उस गलतफहमी के शिकार तो नहीं हो रहे हैं, अनुमान तो नहीं लगा रहे हैं। नेक्स्ट है हिसाब किताब का ग्रहण। कई बार हम अपने हिसाब किताब को रोते रहते हैं, नए नए रूप से आता है, कोई बीमारी के रूप में आएगा या कोई मृत्यु के रूप में, अपने स्वजनों की परिजनों की मृत्यु हो जाती है। तो हिसाब किताब तो बाबा ने हम सबको ये बिता ही दिया कि हमारे किए हुए ही हिसाब, कर्मों का हिसाब किताब है जो हमको आना ही है। अब उसका हमको मेथड बता दिया, खुशी खुशी चुक तो करना है, रो रो के करना, वो हमारे हाथ में है। तो हमको खुशी खुशी वो हिसाब किताब चुक तो करना, उसमें उसके बश नहीं हो जाना है, बाहर होकर डिटैच होकर साक्षी होकर वो हिसाब किताब भी, वो फिर दान, हाँ वो दान भी वो अलग है, वो फिर कैसे उसके उसके उपाय हैं, क्या क्या करना पड़ता है उस ग्रहण से छूटने के लिए। तो ये हिसाब किताब है। तो जैसे जादू टोने की बात पीछे आई, तो हमको याद है हमारे ऊपर भी जादू टोना किया था एक बार पिताजी ने, पहले शायद किसी को सुनाया होगा। हाँ तो पिताजी ने किया था, दूसरे करे तो अलग बात है, अब पिताजी करे तो तो वो ये ऐसे हुआ था कि जब हम नए नए ज्ञान में चले, अब शुरू शुरू में तो नशा बहुत होता है, पूरे संसार से पंगा ले लेते हैं, क्योंकि ज्ञान समझ में आ जाता है अच्छी तरह से। तो क्या हुआ, पिताजी शादी का दबाव डाल रहे थे, तो हम जहाँ सर्विस करते थे तो वहाँ बैठे हुए थे ऐसे ही, तो बैठे बैठे मैं सोच रहा था कि अभी मैं अशरीरी बनने का अनुभव करता हूँ, तो मैं हो ही नहीं पा रहा हूँ, ऊपर जा ही नहीं पा रहा हूँ, ऊपर मैं आधे में लटक रहा हूँ, और वहाँ मुझे दिखाई दे रहा कि पिताजी अभी आ रहे हैं, पिताजी आ रहे हैं। बस यही बार बार वो संकल्प जैसे दृष्टिगोचर हो रहा सामने कि अभी आपके पिताजी आएंगे, उनके हाथ में काले रंग का बैग होगा, उसके अंदर एक पुड़िया होगी कागज की, और उसके अंदर लाल रंग की मिट्टी होगी, और वो मिट्टी तेरे पर फेंकेंगे, ये दिखाई दे रहा है। कशमकश तो बड़े लंबे समय से चल रही थी उनके साथ, लेकिन वो ये अंतिम हथियार यूज कर रहे थे, उसके पहले बहुत सारी बातें बीत चुकी थी। तो जब देखा आधे घंटे में सच में पिताजी आ गए, तो मैं बोला आज तो योग नहीं लग रहा, वो तो ये बाबा कुछ दिखाया, तो कुछ तो है गड़बड़। और हमने बचपन से इन चीज़ों का विश्वास नहीं किया, हमको पता था कि पिताजी तांत्रिक हैं, लेकिन हम विश्वास नहीं कभी किया, और आज तक भी नहीं किया उन पर। लेकिन होता है उनका, वो होता तब है जब हम कमजोर होते हैं। अगर हम शक्तिशाली हैं, किसी के प्रति भी ऐसी हमारी भावना है, इन तो काम करेगा ही नहीं वो। तो पिताजी आ गए, फिर हम बैठे हुए, तो हमने फिर उनका आदर सत्कार किया, फिर उनके हाथ में जो बैग था, उन्होंने कहा कि आप ये बैग रख लो थोड़ी देर, और मैं थोड़ा मार्केट घूम के आता हूँ। तो मैं बोला ठीक है। तो मैं फिर मुझे याद आया, मैं बोला देखो तो सही। तो जैसे हमने वो बैग देखा, तो सच में जो दृश्य दिखाई, जैसे संदेश संदेश सुनाती है ना, तो वैसे बाबा ने पहले हम सबको दिखा दिया हुआ था। तो नहीं अभी कुछ नहीं, अभी तो दूसरा दूसरा ही बातें दिखती है, और अभी दिखेगा क्योंकि अभी पिताजी चले गए। अब पिताजी चले गए है? नहीं अभी कुछ नहीं दिख रहा। नहीं कोई कोई कई बार अच्छी अच्छी चीजें दिखती हैं, खराब भी दिखती हैं, तो हम उससे डिसअल्टेड नहीं होते। कोई बात नहीं, हो तो बीत गया सो बीत गया, सपने की तरह वो। तो जैसे हमने बैग देखा, तो बैग के अंदर पुड़िया पड़ी, तो हमको जो बाबा ने टचिंग कराई उस समय, तो हम वो पुड़िया लेकर, वहां एक बगीचा था थोड़ी दूरी पर, क्योंकि पिताजी तो बाजार गए हुए थे, तो हमने वो कागज की पुड़िया लेकर वहां बगीचे में गए, और वो पुड़िया वहां, पुड़िया नहीं फेंकी, पुड़िया की मिट्टी फेंक दी वहां, और उस कागज को उल्टा कर दिया, जो चलाया बाबा ने दिमाग, तो हमने दूसरी मिट्टी लगभग उसी रंग की मिल गई वहां, तो मिट्टी रख के कागज को उल्टा करके ओम शांति ओम शांति ओम शांति करके बंद करके बैग में रख दिया हमने आगे फटाफट। तो पिताजी आ गए शाम को वापस थोड़ी देर में, बोला चलो घर में, बोला चलो। अब मुझे तो मालूम था जहां तिवाटा है चौरस्ता है कुछ करेंगे मेरे को। तो हम आगे आगे जा रहे थे और पीछे पीछे, तो पिताजी ने पीछे से मिट्टी वो निकाल के मेरे पर फेंक दी। हम तो जाते हुए अनजान बन गए। तो जैसे हम घर पहुंचे फिर, तो पिताजी बहुत स्ट्रिक्ट थे, हम कभी पिताजी के बराबर कभी नहीं बैठे, हम नीचे ही है, मार पड़ती है बात मत पूछो। लेकिन वो पुराने जो लोग, उनके मार में प्यार बहुत होता था, वो इसलिए मारते थे कि हमारे बच्चे कहीं भी ठोकर ना खाएं, पक्के हो जाए एकदम। तो खैर वो उनकी जो मार भी ना, उसमें उन्होंने सीखा बहुत कुछ। तो घर में पहुंचे हम, उसमें मैं और पिताजी, हमने खाना वाना बनाया, उनको भी खिलाया, खुद भी खाया, और फिर हम बैठ गए नीचे। तो पिताजी ऊपर बैठे हुए, तो बोला क्या करना तुमको, शादी करनी कि नहीं करनी? बोला हाँ मैं करूँगा शादी, मैं ब्रह्मा कुमारी के चक्कर में जाने वाला नहीं हूँ, मेरे विचार बदल रहे हैं अभी। तो पिता ने सोचा मिट्टी मेरी काम कर रही है अभी। वो सोच रहे थे सफलता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, लेकिन ये नहीं पता कि उनकी सफलता को ग्रैंड लग चुका हुआ है। तो खैर वो मान लिया भाई ठीक है, तो हमने बोला करेंगे आप देखो, लेकिन उनको शक बहुत था क्योंकि पहले हम उनको बहुत तंग कर चुके हुए थे, बहुत बार मना कर चुके थे, वो फिर दूसरी हिस्ट्री है। तो खैर कई 5-6 महीने तक मैं उनको उनकी मिट्टी के ऊपर ही चलाता रहा कि आप देखो आगे की कार्रवाई करो, हम आएंगे आएंगे। तो खैर एक दिन फिर फंक्शन था, फंक्शन में हम सबके सामने कह दिया हमने कि अपन आपने हमारे साथ ऐसे ऐसे किया था और हमने ऐसे कर दिया। तो फिर वहाँ पिताजी पहले तो मानने को तैयार ही नहीं थे, फिर हमने सब कुछ बता दिया कि ये पेड़िया थी, ऐसी मिट्टी थी और हमने वहाँ फेंक दी थी, अगर अब आपने आगे से किया तो आपको उल्टा पड़ेगा, मेरे से कुछ होने वाले नहीं, क्योंकि मुझे पहले ही बाबा ने दिखा दिया था, नहीं तो मुझे अगर बाबा से मुझे प्यार नहीं होता या बाबा सत्य नहीं होता तो मुझे दिखाता ही नहीं। तो वहां से देखा उन्होंने कि ये अपनी अवस्था पर चल डोला और ये सचमुच हुआ है, तो वहां से पिताजी थोड़ा नरम हो गए। फिर बाद में तो फिर मधुबन भी आए, फिर बाद में थोड़ा ज्ञान में चले नहीं चले ऐसे, क्योंकि समझ में ज्ञान आना तो एक दो दिन की बात नहीं है। फिर चलते चलाते वो 2017 में चले गए, फिर वो श्री छोड़ दिया 2000 में। तो खैर ये है कि हमको ये जो भक्ति है मांगने संस्कार या भक्ति ज्ञान में आने के बाद जो दूसरों के प्रति इस तरह की प्रतिक्रियाएं करनी है, ये बहुत खतरनाक है, ये बिल्कुल नहीं करना चाहिए, और कोई कोई तो करते हैं। तो इनसे भी हमको सावचेत रहना, सावधान रहना है। इस तरह के ग्रहण से हम अपने पांव पर ही कुल्हाड़ी मार रहे हैं। तो देखना है कि हिसाब किताब जो भी हमारे सामने आते हैं उनको हमको खुशी खुशी योग बल से, योग में बहुत ताकत है, लेकिन हम निरंतर उसके ऊपर पूरा अभ्यास करेंगे, उस पर विश्वास करेंगे, अपनी शक्ति से माने विजय हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है जो बाबा कहते हैं, उसको एक्सेप्ट करना है। लेकिन वो ऐसा नहीं कि विजय हमको तुरंत मिल जाएगी, हार भी हो सकती है, हार का ग्रहण भी लग सकता है, लेकिन लंबे समय का प्रयास करने के बाद विजय मिलेगा। अगर फिर भी नहीं मिलती है फिर प्रयास जारी रखना, क्योंकि अंत जब बाबा ने कहा जब तक जीना तब तक ज्ञान अमृत पीते रहना है। तो ये था कि हिसाब किताब का भी ग्रहण है। नेक्स्ट है इन्फॉर्मेशन। अनावश्यक रूप से हम इन्फॉर्मेशन एकत्रित करते रहते हैं, ये भी हमको मालूम होना चाहिए, ये भी मालूम होना चाहिए संसार में क्या चल रहा है। जितना हमको जरूरत है उतनी इन्फॉर्मेशन जरूरी है, अनावश्यक इन्फॉर्मेशन भी हमारे दिमाग को दिमाग की तरह खा जाती है, ग्रहण लगा हुआ है, एक तो ज्ञान बुद्धि में बैठ नहीं रहा है और दूसरा और ऊपर से हम सूचनाएं भर रहे हैं, तो इस ज्ञान को कब भरेंगे फिर, इसको तो खाली करना उन सूचनाओं से। तो हमको ये देखना है कौन कौन सी सूचनाएं हैं जो हमारे इस ज्ञान को खा रही हैं, हमारे ज्ञान को ग्रहण लगा हुआ, ज्ञान जो हमारी प्रॉपर्टी संपदा है, हमारी संपत्ति है, जो हमारी ऑक्सीजन है, हमारी ऑक्सीजन जो अनावश्यक सूचना है उसको खा जा रही है। तो इस ग्रहण से भी हमको मुक्त होना है, कौन सा इन्फॉर्मेशन, अनावश्यक इन्फॉर्मेशन, उसी में लगे रहना, व्हाट्सअप ये आ रहा है, वो आ रहा है, वो आ रहा है, सूचने आती हैं लेकिन टू मच नहीं, शॉर्ट एंड स्वीट, जितना हमको जरूरत है वो ही देखना है। नेक्स्ट है जेलसी। जेलसी का ग्रहण ये पहले वैसे आ गया, या फिर साथ में इसको और देख सकते हैं दूसरे इसमें लेंगे तो जमाखोरी का ग्रहण, जमाखोरी संग्रहण वृत्ति, अनावश्यक चीजें एकत्रित करनी। बहुत सारी चीजें हमारे घर में ऐसी होती जिनको हम उपयोग में नहीं लाते हैं, ऐसे पड़ी हैं लंबे समय तक, कोई कोई डिपार्टमेंट में देखो बहुत सारी चीज़ें कई सालों तक ऐसे पड़ी हैं, ये नहीं कि किसी को दे ही दें, किसी के काम में आ जाएं, नहीं वहीं पड़े पड़े सड़ जाएंगी, खराब हो जाएंगी। तो वो भी एक हमारी एनर्जी वहाँ उन चीज़ों में जा रही है, क्योंकि जितनी भी चीज़ें हम रखते हैं हमारा मन बुद्धि उन चीज़ों के साथ जुड़ा हुआ है, क्योंकि वो चीज़ें हमारे हाथ से पकड़ के हमने रखी हैं, और हमारा दिमाग जब तक वो चीज़ें वहाँ से लोप नहीं हुई तब तक वो रहेगा। तो जितनी चीज़ों की हमको जरूरत है उतनी रखनी है। अनावश्यक जमाखोरी करने से भी एक ग्रहण लगा हुआ है, उससे भी हमारी एनर्जी नष्ट हो जाती है, हमारी शक्तियां नष्ट होती रहती हैं। तो ये है कि जमाखोरी। नेक्स्ट है कुसंग का ग्रहण। कुसंग बहुत बड़ा ये भी एक विषय है कि हमारा संग कहाँ कहाँ है। एक स्थूल होता है, एक सूक्ष्म होता है। स्थूल संग से बचना और साथ में सूक्ष्म से, एक है हम कौन कौन से लोगों के साथ रहते हैं। हाँ रहना तो हमको अब संगठन बेहद का संगठन है, जहाँ हर एक को दूध से दुले हो तो मिलेंगे नहीं, मिलेंगे अच्छे भी मिलेंगे खराब भी मिलेंगे, लेकिन वास्तव में हैं तो सभी अच्छे ही। बाबा कहते हैं सबके अनादि आदि संस्कार को देखो। तो उस संघ में हमको कुसंग के भाव में बह नहीं जाना है, वहाँ हमारे कदम इधर उधर न चले जाएँ, उनके संग में नहीं जाएँ, मित्र मंडली के बहकाव में आकर हम अपने ऊपर ही अपने एनर्जी को खत्म कर दें या अपने पुरुषार्थ को खत्म कर दें। तो हमको कुसंग से भी सावधान रहना है। हमारा ठीक है संग ठीक ठाक है, अंदर ही अंदर मन में हमारा कौन सा संग चल रहा है। नेक्स्ट है लोकलाज का ग्रहण। लोक लाज भी बहुत होती है। इस ज्ञान में आने के बाद कोई को तो छोटा सा बैज लगाते हैं, दिखे ही ना क्या है ना, वो ऑफिस में लगाएंगे या नहीं भी लगाएंगे, घर आने के पास में जैसे घर आएगा साथ में लगा देंगे, ऑफिस में खोल देंगे, सेंटर के बाहर लगा देंगे, बटन वाला बैज लगा देंगे। तो लोक लाज भी बहुत है, कब तक लोक लाज के पर्दे के पीछे अपनी जिंदगी को ऐसे हम जीते रहेंगे, घुट घुट कर जीते रहेंगे, ना इधर के ना उधर के, दोनों लड्डू खाएंगे, दोनों दूरदर्शन देखते रहेंगे। तो लोक लाज का विग्रहण है। नेक्स्ट है लॉस, लॉस का ग्रहण। लॉस होता है कहीं हमको आर्थिक हानि हो जाती है तो उसे उबर नहीं पाते हम, आर्थिक या कोई भी दूसरा हमको आध्यात्मिक हानि हो रही है इसका भी हमको ग्रहण लगा हुआ है, कहीं ना कहीं इस आध्यात्मिकता से हम दूर क्यों जाते जा रहे हैं, क्यों इससे हमारी दूरियां बढ़ती जा रही हैं, तो कहीं ना कहीं हमको खुद की जांच करने की जरूरत है। अच्छा, ग्रहण से छूटे, हाँ उससे तो ग्रहण से छूटने की युक्तियां, हाँ ग्रहण से छूटने की युक्तियां हैं, अमृत वेले का अमृत रोज पीने का है, ऐसे रोज अनुभव करना है कि अमृत वेले बाबा ऊपर से अवतरित होकर हमको ज्ञान अमृत पिला रहे, याद का हूं। दूसरा वो जो देखते हैं कि चौरस्ते पर जाते हैं, हमको डेली चार धाम की यात्रा करनी है मन बुद्धि से। तीसरा बीज मंत्र देते हैं कुछ, तो हमको डेली वो मंत्र याद करने, जो उसने बताया था जादू मंत्र इंस्टेंट टॉपिक में, कौन कौन से जादू मंत्र हैं उनको उनको याद रखना है। अब घर जाना है, ओम शांति हुकुम हुकुम चला रहा है, या मैं नहीं करूंगा तो कौन करेगा, हम सोसो हम का मंत्र है, मन मना भव मध्याजी भव, ये सारे मंत्र याद रखने हैं और अपने मंत्र क्रिएट करने हैं, अपने मंत्रों में ताकत होती है, तो ये बीज मंत्र हैं। तीसरा है छत्रछाया में रहना है, सवेरे सवेरे उसकी छत्रछाया में, और पूरा दिन बाबा ने कहा जो अमृत वेले एक्सपीरियंस करते हो वो अनुभव सारे दिन में चलता रहना चाहिए, तो बाबा की छत्रछाया में रहना है। फिर चिंतन चलता रहना चाहिए हमारा, थोड़ा बहुत चिंतन चलता रहना, ज्ञान डांस करते रहे, दान करते रहे, दूसरों को ज्ञान का दान करते रहे, दान दे दान तो छूटे ग्रहण कहा जाता है, तो ये दान भी करना है। चौथा है तीर्थ, तीर्थ स्थानों पर जाओ, हाँ, और एक जो दिव्य नेत्र दिव्य दृष्टि दिव्य बाबा ने जो हमको दी है गिफ्ट दिया है, इसको हमको गिफ्ट को हमेशा रखना है, और कभी कभी डिटैच हो जाना है बॉडी से, उस स्थान को छोड़ना पड़ता है, उस स्थान को अर्थात इस शरीर को छोड़ देने का है, थोड़े समय के लिए परमानेंट नहीं, शरीर से डिटैच होने का अनुभव करना है। नेक्स्ट है अपने इष्ट देव देवी के स्वरूप में स्थित रहना है। नेक्स्ट है अपने फरिश्ता स्वरूप में स्थित रहना है, परिक्रमा करनी है, या जो पहले भी बात हुई फुल स्टॉप कर देना है। नेक्स्ट है गॉड कॉन्शियसनेस रहना है, उसकी स्मृति बनी रहनी चाहिए, परमात्म स्मृति में रहना है। नेक्स्ट है होली हंस बनकर पवित्रता की बरसात करते रहना है, जहां जहां हमको ग्रहण लगा हुआ है वहां प्योरिटी के वाइब्रेशन है ना, एक ही संकल्प बहुत अच्छा है कि मैं परम पवित्र आत्मा हूं, विश्व की सर्व आत्मा को प्रकृति के पांचों तत्वों से निरंतर पवित्रता का वाइब्रेशन दे रही हूं, तो वो भी करना है। फिर नेक्स्ट है आई एम सोल ओनली सोल, सिर्फ उसी पर स्थित हो जाना है, मैं कौन हूं, अपने ओरिजिनल जो मूल अपने गुण हैं, सात गुण हैं, उन पर स्थित रहना है। फिर नेक्स्ट है जवाबदारियां जो हमको मिली हैं उनके ऊपर हमारा पूरा फोकस होना चाहिए, अगर उनके ऊपर हमारा फोकस होगा तो वो ग्रहण अपने आप ही खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट है कर्मयोगी, कर्म करते हमारा जीवन कर्मयोगी जैसा होना चाहिए, योग कर्म के साथ योग जुड़ जाए, अर्थात कर्म के साथ योग नहीं, कर्म करते हुए हमारा योग लगा रहे, तो इस तरह की कोई युक्ति रचनी है। ला और लव का बैलेंस रहने, ऐसा नहीं कि प्यार प्यार के उस बहकावे में आके हम अपने आप ही बह गए, ला और लव दोनों का बैलेंस रखना है, हमको किसी के प्रभाव में नहीं आना है, मनन चिंतन का भी चलता रहे, मनन चिंतन का हलवा बना के खाना भी और खिलाना भी है। फिर नष्ट मोह स्मृति, फिर ओम शांति का मंत्र याद रखना है, प्योरिटी जो हमारा फाउंडेशन है उसको मजबूत करना है। नेक्स्ट है क्यों क्या से, बाबा ने कहा ना उस दिन क्यों क्या से परे रहना है, तुम्हारा क्या जाता है, परसों की मुरली थी, तुमको अपने पुरुषार्थ से मतलब रखना है, कौन क्या कर रहा है छोड़ दो, अभी टाइम नहीं है, अभी तो वापस जाने का टाइम आ गया है। नेक्स्ट है रियल हैप्पीनेस, सच्ची खुशी, खुशी है इतनी की बात मत पूछो, जीवन में सच्चाई सफाई होनी चाहिए, और टोटल सरेंडर समर्पण, मन बुद्धि की समर्पण, उपकार की भावना, तीन पर काट दो एक पर चालू रखो, पर उपकार विजय भव का तिलक रहते रहो, और ये वंडरफुल नॉलेज है उसका सिमरन हमेशा चलता रहे, बहुत सारी युक्तियां जिससे हम इस हैं शुद्ध संकल्पों को, शुद्ध संकल्पों का भोजन ग्रहण करते रहो तो दूसरे ग्रहण खत्म हो जाएंगे, लगा तो हुआ है पहले से, वो खत्म हो जाएगा। तो ये कुछ एक बातें थी जो हम खुद भी चिंतन कर सकते हैं। ज्ञान है, किधर से भी घुमा लो, कहीं से भी इसको खाते रहो, ना इसमें गुठली है ना इसमें छिलका है, ये ज्ञान ऐसे खाते रहो तो हमेशा जीवन हमारा निर्विघ्न रहेगा, किसी भी प्रकार का ग्रहण हमको प्रभावित नहीं कर पाएगा। ओम शांति।
हम शिव की संतान, हमसे काल भी हारा। हम शिव की संतान, हमसे काल भी हारा। हम बदल करके रहेंगे वक्त की धारा। हम बदल करके रहेंगे वक्त की धारा। आसमां सुन ले युवा संकल्प करते हैं, आसमां सुन ले युवा संकल्प करते हैं। हम बना देंगे धरा को स्वर्ग सा प्यारा, स्वर्ग सा प्यारा। हम शिव की संतान, हमसे काल भी हारा। हम शिव की संतान, हमसे काल भी हारा। हमारे भाग्य का तारा।